بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے، اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ شوتو یہ سبھا آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ آج بدھوار ہے، اردی بہشت کی 15، رمضان مبارک کی 22 اور مئی کی 5 تاریخ۔ پروگرام کی روپریکھا اس پرکار ہے، صدا کی بھانتی پہلے آپ سماچار سنیں گے، اس کے بعد راجنیتک چرچا پیش ہوگی، پھر آپ 22ویں رمضان کا خاص پروگرام سنیں گے اور سبھا کا انتم پروگرام ہے آج کل۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات جب تک تمہارے منہ سے نہیں نکلی اس وقت تک وہ تمہارے قبضے میں ہے، لیکن ایک بار جب تمہارے منہ سے نکل گئی تو تم اس کے قبضے میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی اس طرح رکشا کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی رکشا کرتے ہو، کیونکہ کبھی کبھی منہ سے نکلی ہوئی بات کسی بڑی نعمت کے چھن جانے یا کسی بڑی مصیبت کے نازل ہونے کا کارن بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کا گھاؤ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمزور کا یہی بس چلتا ہے کہ وہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ لالچ کے بارے میں آپ کا کتھن ہے کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 00989035065492۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/HI۔ اور اب آپ وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ IRGC نے دکشن پوروی پرانت سیستان و بلوچستان میں ایک سشستر گٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت میں COVID-19 مہاماری سے نپٹنے میں سرکار کی لاپرواہی پر ایک اچھ عدالت نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ سیریائی وایو رکشا پرنالی نے دیش کے پشچمی تٹیہ شہر لتاکیا کے پاس اسرائیل کے کئی میزائلوں کو ہوا میں ہی مار گرایا ہے۔ اور اب آپ مریم مردادی اور محمد علی گومی سے وستار سے سماچار سنیے۔
راشٹرپتی روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھوار کو منتری منڈل کی بیٹھک میں کہا کہ جلد ہی جنتا کو بتائیں گے کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں، اور اگر سبھی ایک جٹ رہے تو جلد ہی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سامنے والے پکش کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے پاس JCPOA میں لوٹنے اور پرتیبدھتاؤں کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ آج قدس میں زائونی شوق منا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ذریعے جس آرتھک جنگ کو شروع کیا تھا وہ پوری طرح ہار کے قریب پہنچ گئی ہے، اور شیتر کے دیشوں کو ایران سے دور کرنے کی کوشش بھی ناکامی کی حد پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پابندیوں کے ختم ہونے کی استھتی پہلے سے زیادہ انکول ہے کہا کہ JCPOA میں ایرانی راشٹر کے ادھیکار پوری طرح سنشچت ہونے چاہیے اور ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایرانی راشٹرپتی نے وشو قدس دیوس کے آیوجن کو امام خمینی کی وصیتوں میں سے ایک بتاتے ہوئے اسے اسلامی گڑتنت ایران کی ویوستھا کا کارنامہ بتایا۔ ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ فلسطینی راشٹر اپنی سرزمین پر لوٹے گا اور قدس اور مسجد الاقصی مسلمانوں کے اختیار میں آئے گا۔
ودیش منترالے کے پروکتا نے ایران امریکہ کے بیچ وینا میں متبھید کے بندوں کے کم نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی پرتنیدھی منڈل بڑی ہوشیاری و باریکی کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ اگر امریکہ پابندیاں باقی رکھنے پر اڑا رہتا تو بات چیت اب تک رک گئی ہوتی۔ انہوں نے بدھوار کو پریس کانفرنس میں ایک جانکار سوتر کے حوالے سے امریکہ کے پابندیوں کو باقی رکھنے پر آگرہ سے سمبندھت خبر کے بارے میں کہا کہ وینا میں ایران امریکہ کے بیچ متبھید کے بندو کم نہیں ہیں، اور کچھ باتوں میں امریکہ کا رویہ قبول کرنے یوگیہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وینا میں ایرانی پرتنیدھی منڈل پوری ہوشیاری کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی خبروں پر امریکہ ایران کے خلاف کڑی پابندیاں باقی رکھنے کی بات کر رہا ہے اور وبھن بہانوں سے 2015 کے پرمانو سمجھوتے جے سی پی او اے کو تھوڑا ہلکا کر کے لاگو کرنے کی کوشش میں ہیں۔ کہا کہ اس طرح کے دعوے غلط ہیں کیونکہ اگر امریکہ اس طرح کی بات کرتا تو اب تک بات چیت رک گئی ہوتی۔ ودیش منترالے کے پروکتا سعید خطیب زادے نے سوموار کو بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایران کی مول نیتی یہ ہے کہ امریکہ سرکشا پریشد کے پرستاؤ 2231 کے تحت اپنے سبھی پرتیبدھتاؤں کی اور پلٹے، جن میں ایک ایک شبد کو پرکھا جائے گا، اور جیسا کہ سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں کہ اس سمبندھ میں نہ ہمیں جلد بازی ہے اور نہ ہی ہم ایسے کھیل میں شامل ہوں گے جو تھکانے والا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ساری پابندیاں ایک ساتھ ہٹیں اور ان کا ستیاپن ممکن ہو۔ جو کچھ سنکلت ہو رہا ہے اور امریکہ کی اور سے اٹھنے والے قدم کے بارے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ پوری باریکی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی بات لکھی جاتی ہے تو پوری باریکی کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔
پریس ٹی وی نے ایک جانکار سوتر کے حوالے سے بتایا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف لگائے گئے سبھی پرتبندھوں کو ہٹانے سے انکار کرتا ہے تو تہران پرمانو سمجھوتے کی بحالی کے لیے وینا میں جاری وارتا سے باہر نکل جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایران پرمانو کارکرم سے سمبندھت سبھی پرتبندھوں اور ان پرتبندھوں کی سماپتی پر ڈٹا ہوا جو امریکہ کے پورو راشٹرپتیوں باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے شاسن کال میں لگائے گئے تھے۔ سوتر کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ان سبھی پرتبندھوں کو سماپت نہیں کرنے پر اڑا رہتا تو نشچت روپ سے وارتا یہیں رک جائے گی۔ وینا میں ایران کے پرمانو وارتاکار پرتنیدھی منڈل نے زور دے کر کہا ہے کہ پرمانو سمجھوتے کے بعد واشنگٹن نے جو بھی پرتبندھ تہران کے خلاف لگائے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مدعے سے سمبندھت ہو، انہیں ہٹایا جانا چاہیے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پرتبندھوں کے کارن ایران کے ساتھ آرتھک اور بینکنگ سہیوگ کے لیے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ابھی تک امریکہ آوشیک قدم اٹھانے پر راضی نہیں ہوا ہے۔
ایران کی اسلامی کرانتی سرکشک فورس IRGC نے پاکستان کی سیما سے لگنے والے دکشن پوروی پرانت سستان و بلوچستان میں ایک سشستر گٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ IRGC نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ اس نے پرانت میں آتنکوادی گٹ کے سدسیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا، جس میں 2 آتنکوادی مارے گئے اور انے کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گینگ ہنسا، اپہرن اور ہتیا جیسے اپرادھوں میں لپت تھا۔ اس کاروائی میں گولہ بارود اور وسفوٹک سامگری سمیت ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ پچھلے ہفتے IRGC کی قدس فورس نے سستان و بلوچستان میں آتنکوادیوں کے ایک دل کو نشٹ کیا تھا، جس کے سدسیہ دوسرے کچھ دیشوں سے آتنکوادی حملوں کی ٹریننگ لے کر لوٹے تھے۔ سستان و بلوچستان کی سیما پاکستان سے ملتے ہی اس پرانت میں آتنکوادی ناگرکوں اور سرکشا بلوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔
وشو قدس دیوس کانفرنس کے پرایوجک نے کہا کہ پرتیرودھ کے مورچے نے قدس کے مدعے کو ختم کرنے کی سبھی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی نے ایران پریس انٹرویو میں کہا کہ امریکہ فلسطینی کاز کو سازشوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن پرتیرودھ کے مورچے کی وجہ سے وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے آتنکوادی گٹ داعش کو بنا کر اور عرب اسرائیل سمبندھوں کی سازش رچ کر شیتر کے حالات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن پرتیرودھ کے مورچے نے اسے ناکام بنا دیا۔ دوسری وشو قدس دیوس کانفرنس کے آیوجک نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو پرتیرودھ کے مورچے کو ختم کرنے کے لیے شہید کیا گیا تھا، لیکن ان کی شہادت سے پرتیرودھ کا مورچہ اور مضبوط ہو گیا۔ آیت اللہ عرافی نے پورے اسلامی جگت، خاص طور پر مسلمان نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ عرب اسرائیل سمبند کو سامان بنانے اور اسلامی جگت کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ بات چیت کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دھارمک کیندر اور ورشٹ دھرم گرو اسلامی جگت کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور شیتر کے دیشوں کو بھی اسرائیل سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
ایران میں کورونا ویکسین فقرہ کا انسانوں پر ٹرائل کامیابی کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ ایران کے شہید ویگیانک محسن فخری زادے کے بیٹے کو فقرہ ویکسین کا ڈوز لگائے جانے کے ساتھ ہی اس ٹیکے کی انسانوں پر ٹیسٹنگ کی پرکریا پوری ہو گئی۔ اس ٹیکے کی انسانوں پر ٹیسٹنگ میں سوچھا سے نام لکھانے کی پرکریا پچھلے مہینے شروع ہوئی تھی۔ فقرہ ٹیکے کے انسانوں پر ٹرائل کا پہلا چرن 16 مارچ کو ہوا تھا، اور شہید فخری زادے کے بیٹے کو اس کی پہلی ڈوز لگائی گئی تھی۔ اس موقع پر ایران کے رکشا منتری اور سواستھ منتری بھی موجود تھے۔ दूसरी ओर ईरान में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 से 349 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 73,568 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ईरान में कोविड 19 के 15,872 नए के सामने आए, जिनमें से 2,449 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ईरान में कोविड 19 की चपेट में आने वालों की कुल तादाद 25,91,609 हो गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अब तक देश में कोविड 19 के कुल मरीजों में 20,39,427 लोग ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं।
तेहरान स्थित स्विट्जरलैंड के दूतावास में काम करने वाली एक वरिष्ठ कर्मचारी की गगनचुंबी इमारत से गिरकर मौत हो गई। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आपातकालीन सेवा के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की। आपातकालीन चिकित्सा सेवा संगठन के प्रवक्ता मुज्तबा खालिदी का कहना था कि कामरानी इलाके में स्थित एक ऊंची इमारत से 52 वर्षीय महिला गिर गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। खालिदी ने बताया कि मृतिका स्विस दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर थी। उनका कहना था कि इमारत से गिरने की पुष्टि हो चुकी, लेकिन तत्काल रूप से कहा नहीं जा सकता कि इसका कारण दुर्घटना है, आत्महत्या या कुछ और है।
भारत में कोविड 19 महामारी से निपटने में सरकार की नाकामी और लापरवाही को लेकर एक उच्च अदालत ने एक बार फिर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड 19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटों के भीतर इन मौतों की तथ्यात्मक जांच करें। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें। उच्च अदालत ने सरकारी मशीनरी की लापरवाही और नाकामी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में महामारी के बेकाबू होने और केंद्रीय सरकार की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत का कहना था कि हमें ये देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड मरीजों की जाने जा रही हैं। ये एक आपराधिक कृत्य है और ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल मेडिकल ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने देश के पश्चिमी तटीय शहर लताकिया के पास इसराइल के कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। मंगलवार की रात लगभग 2:18 पर इसराइली लड़ाकू विमानों ने लताकिया समेत कई क्षेत्रों पर मिसाइल दागे, लेकिन सीरियाई मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने दुश्मन के मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। सूत्रों का कहना है कि इसराइली हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे और उसकी मां समेत 6 अन्य घायल हुए हैं। हमले की वीडियो फुटेज में आसमान में कई भीषण धमाकों की आवाजों को सुना जा सकता है, जो सीरियाई मिसाइलों के इसराइली मिसाइलों के टकराने से पैदा हुई।
इराक में अमरीकी एयरबेस अल असद पर रॉकेट हमला हुआ है। हालिया दिनों में अमरीकी सैनिकों पर यह ऐसा तीसरा हमला है। इराकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए गए थे, लेकिन इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इराकी टीवी चैनल अल अहद की रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट हमले के बाद एयरबेस में खतरे के सायरन गूंज उठे और अफरा तफरी मच गई। इससे पहले सोमवार को अल बलद एयरबेस पर 6 रॉकेटों से हमला किया गया था, जहां अमरीकी सैनिक और लड़ाकू विमान तैनात हैं।
अबूधाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद आज अचानक रियाज के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें वो ईरान और गुट 4+1 के बीच वार्ता सहित क्षेत्र के अहम मामलों पर सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करेंगे। इमारात 71 वेबसाइट के मुताबिक रियाज में एक जानकार कूटनैतिक सूत्र ने जर्मन एजेंसी DPA को बताया कि शेख मोहम्मद बिन जायद आज रियाज जा रहे हैं, जहां वे सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भेंट वार्ता करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे विश्व कुछ दिवस की पूर्व संध्या पर दमिश्क में आयोजित हुए सम्मेलन की और फिर बात करेंगे उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच जारी टकराव के मध्य एक बार फिर किम जोंग उन की बहन द्वारा वाशिंगटन को दी गई चेतावनी की और अंत में चलेंगे भारत, जहां ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की सत्ता तीसरी बार संभालने की ली गई शपथ के बारे में हमारे संवाददाता आपको अवगत कराएंगे।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली।
तो सबसे पहले चलते हैं सीरिया और बात करते हैं दमिश्क में प्रतिरोध की पाठशाला के गठन और फिलिस्तीनी क्रांति के उदय पर स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के विचार के प्रभाव का आयाम के शीर्षक के तहत आयोजित हुए सम्मेलन की। इस संबंध में दमिश्क से IRIB के संवाददाता हिसाम एलाली एक रिपोर्ट पेश कर रहे हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी की आवाज में।
प्रतिरोध की पाठशाला के गठन और फिलिस्तीनी क्रांति के उदय पर स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के विचार के प्रभाव का आयाम दमिश्क में कुद्स दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले एक सम्मेलन का शीर्षक था। इस्लामी क्रांति ईश्वर की ओर से फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए एक तोहफा थी। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के विचारों ने क्षेत्र के शक्ति संतुलन को ऐसा बदला है कि आज ज़ायनी शासन हर तरह की आधुनिक हथियारों के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। वक्ताओं ने इस सम्मेलन में पिछले चार दशकों में क्षेत्र में प्रतिरोध की भूमिका की समीक्षा की और साथ ही दुश्मन के साथ सामान्य किए जा रहे संबंधों को प्रतिरोध को मिल रही जीत को प्रभावित करने की साजिश बताई। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के विचार अत्याचारियों के मुकाबले में मजलूमों का समर्थन करना है। उनके विचारों ने एक ऐसे विचारधारा की बुनियाद रखी जिसने प्रतिरोध में एक नई जान फूंक दी। आज बैतुल मुकद्दस में ज़ायनी शासन के आतंकी सैनिकों से मुकाबले के लिए जो युवा जाते हैं वो सब इमाम खुमैनी की पाठशाला के छात्र हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों ने ये घोषणा की है कि आज इस्लामी गणतंत्र ईरान के पूर्ण समर्थन के कारण गजा और वेस्ट बैंक के प्रतिरोध आंदोलनों की मिसाइलों ने ज़ायनी शासन की नींद हराम कर दी है। इस समय हम ज़ायनियों से मुकाबले में अकेले नहीं हैं। प्रतिरोध की धुरी ईरान से लेकर यमन, सीरिया और लेबनान तक हमारे सहयोगी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिलिस्तीन युवाओं को ये विश्वास हो गया है कि इसराइल का अंत निकट है। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने इस बात पर बल दिया है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के विचारों के साथ क्षेत्र ने नए युग में प्रवेश किया है। ये प्रतिरोध का युग है। इस दौर के इतिहास के सबसे बड़े मार्गदर्शक की पाठशाला से निकले प्रतिरोध के योद्धाओं की वजह से आज हम बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीन की आज़ादी के नज़दीक पहुँच गए हैं।
حسام هلالی خبرگزاری صدا و سیما دمشق.
और अब चलते हैं अमेरिका और बात करते हैं वाशिंगटन और पियोंगयांग के बीच बढ़ते टकराव की। इस बीच उत्तरी कोरिया के नेता की बहन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी है। इस बारे में न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता कामरान नजफजादे अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी की आवाज में।
उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो अपने लिए गड्ढा न खोदे। किम यू जोंग अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर बहुत ही नाराज हैं। चीन ने अब तक आधिकारिक रूप से बाइडेन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बाइडेन ने भी चुनाव के दौरान होने वाली डिबेट में किम जोंग उन को ठग कहकर पुकारा था। उन्होंने एक बार फिर उत्तरी कोरिया से परमाणु हथियारों को नष्ट किए जाने की मांग की है। उत्तर कोरिया भी बाइडेन के फोन का जवाब नहीं दे रहा है। इन सभी खबरों को गुलाबी रंग का कपड़ा पहनने वाली उत्तर कोरिया की प्रसिद्ध 77 वर्षीय एंकर, जो रिटायर्ड हो चुकी हैं और जिन्हें फिर से बुलाया गया है, सूचना दी है कि किम जोंग उन का कहना है कि बाइडेन अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जॉन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन एंड्रयू पॉल्स, मैं समझता हूं कि यह साफ संदेश है कि उत्तरी कोरिया किसी भी हालत में अपने परमाणु हथियारों से पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता जेन साकी का कहना है कि जो बाइडेन अमेरिका की पिछली चार सरकारों का अनुभव रखते हैं। अमेरिका की पिछली सरकार ने उत्तरी कोरिया को परमाणु हथियारों से पीछे हटने पर राजी नहीं कर पाई और वे हार गईं। वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन और उनके साथियों ने इतिहास से कई चीजें सीखी हैं। अमेरिका ने सन 1995 में एक समझौते के तहत उत्तरी कोरिया से ये वादा किया था कि अगर वो भारी पानी के रिएक्टर को नष्ट करता है तो अमेरिका उसे हल्के पानी के दो रिएक्टर देगा, लेकिन अमेरिका ने अपने वादों पर अमल नहीं किया और अंततः सन 2002 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने कांग्रेस में उत्तरी कोरिया को बुराई की धुरी वाला देश बताया था। प्योंगयांग और वाशिंगटन के संबंधों को लेकर बहुत सारे एक्टर मौजूद हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं। एक चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद मार्ग, बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जो जहां था वो अब भी वहीं पर मौजूद है।
कामरान नजफ़ज़ादा, खबरگزاری صدا و سیما، نیویورک।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में हाल ही में हुए चुनाव में शानदार और ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने वाली ममता बनर्जी द्वारा तीसरी बार लिए गए शपथ की। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली।
ममता बनर्जी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
রাজভবন মে আয়োজিত সাধারণ শপথ সমারোহ মে পশ্চিম বঙ্গাল কে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় নে মমতা ব্যানার্জি কো পদ এবং গোপনীয়তা কি শপথ দিলাই। উনোনে বাদ মে চুনাবী নতিজো কে বাদ ভড়কি হিংসা কে বারে মে কাহা কি আশা হ্যায় কি মুখ্যমন্ত্রী কানুন ব্যবস্থা বহাল করনে কে লিয়ে তৎকাল কদম উঠায়েঙ্গি।
আই কংগ্রেচুলেট চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফর হার থার্ড টার্ম। আই এক্সপ্রেস হোপ অ্যান্ড এক্সপেকটেশন দ্যাট গভর্নেন্স উইল বি অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রুল অফ ল। ইন্ডিয়া ইজ আ গ্রেট ডেমোক্রেসি where power emanates from process of law।
राज्यपाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी वर्तमान स्थिति पर पक्षपात हितों से ऊपर उठकर कार्रवाई करेंगी। रविवार को बंगाल में चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद हिंसा की कई खबरें सामने आई, जिसे लेकर भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने भी पद संभालने के बाद कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 स्थिति से निमटना होगी और दूसरी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को संभालने के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी। उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों से शांति सुनिश्चित करने की अपील की। बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के नियंत्रण में थी और अब मैं शपथ लेने के बाद ये सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति बनी रहे। उधर पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच राज्य नीति भी गर्मा गई है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और मकान तोड़ने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इसे लेकर भाजपा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं, कहा कि हम बंगाल का साथ नहीं छोड़ेंगे। राज्य की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें जो जनादेश दिया है उसे हम पूरी तरह निभाएंगे। नड्डा ने चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि हम भी शपथ लेते हैं कि बंगाल की धरती से राजनीतिक हिंसा खत्म करेंगे।
बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है।
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करके लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता अपने पास बरकरार रखने का इतिहास रचा है। इस पार्टी को 292 विधानसभा सीटों में से 213 पर जीत हासिल हुई, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकने वाली भाजपा को 77 सीटें मिली। 3 दशकों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले वाम दलों का सफाया हो गया। टीकाकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार काफी बढ़ा है, जिसे 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें मिली थीं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है पवित्र रमजान महीने की महान रातों में से एक, जिसे शबे कद्र कहते हैं, यानी 23वीं रमजान की रात के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पवित्र रमजान पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
सलाम हो उस रात पर जिसे महान व सर्व समर्थ ईश्वर ने 1000 महीनों से बेहतर बताया। सलाम हो उस रात पर जिसका हर क्षण ईश्वरीय दया व कृपा से अवोत प्रोत है, और सलाम हो उस रात पर कि पवित्र कुरान की हकीकत जिस रात में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हृदय पर नाजिल हुई। ये बहुत ही मूल्यवान समय है। रमजान के पवित्र महीने की 23 तारीख को इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आज ही की रात शबे कद्र अर्थात कद्र की रात है, जिसे महान ईश्वर ने 1000 रातों से बेहतर बताया है।
1 साल और गुजर गया और एक बार फिर हमें तेरी मुलाकात का मौका प्रदान हुआ। हम एक बार फिर अपने भाग्य को तेरे हवाले करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि मेरे भाग्य को संवार दे। मैं तुझसे पूरी उम्र उम्मीद लगाए हुए हूँ, हे भाग्यों को संवारने वाले। 1 साल तक मैं कोशिश करता रहा और अपने भाग्य की तुझसे आशा लगाए हुए हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दे। एक तू ही है जो मेरी समस्याओं को समझता है और उन्हें हल करने की ताकत रखता है।
पवित्र रमजान का महीना और इसमें किए जाने वाले ईश्वर के गुणगान और इसमें पढ़ी जाने वाली दुआएं और कुरान की तिलावत, انسان کے دل کو پرکاشمئی بناتی ہیں اور دلوں پر لگے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ یہ پرکاشمئی ماحول شب قدر میں اپنے چرم پر پہنچ جاتا ہے۔ پوتر قرآن کے پرسدھ ویاخیاکار علامہ طباطبائی اس رات سرکشا اور سواستھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوتر قرآن شب قدر کے مہتو کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلام ان حتیٰ مطلع الفجر، سلام کے ارتھ ہے دکھنے والی اور اندیکھی پریشانیوں اور آپداؤں سے خالی ہونا ہے۔ اور اس آیت میں سلام ان اس بات کی اور اشارہ ہے کہ ایشوریہ کرپا ساتھ میں ہے، اور یہ کہ ایشور کی وبھوتیاں سارے بندوں پر ہیں جنہوں نے اس سے آس لگا رکھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ شب قدر میں اس کے پرکوپ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ نیا پرکوپ نہیں بھیجا، اور اس کا ارتھ یہ ہے کہ اس رات شیطان کی چالیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور اس بات کی اور کچھ روایتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔
دوستو، اسلامی روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام پوتر رمضان کے انتم 10 دنوں میں اپنے بستر کو اٹھا دیا کرتے تھے اور بہت ہی کم سوتے تھے، اور شب قدر میں عبادت کے لیے اپنے پریجنوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایشور کے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے پوری نشٹھا، سچائی اور ایمان کے ساتھ شب قدر جاگ کر گزاری ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایشور اس کے سارے پاپوں کو معاف کر دے۔ اس رات دعاؤں میں دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور انسان اپنے گناہوں کے پہاڑ کو دیکھ کر پچھتاتا اور توبہ کرتا ہے۔ لیکن ہر انسان کے من میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں ایشور سے کیا مانگا جائے۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شب قدر وہ رات ہے جو ہر سال رمضان المبارک کی آخری تاریخوں میں آتی ہے، جس میں نہ کیول قرآن نازل ہوا ہے بلکہ ایشور نے اس رات کے لیے فرمایا، اس بھاگ کی رات میں ہر وہ گھٹنا اور کام جو سال بھر میں ہونا ہوگا، جیسے اچھائی، برائی اور گناہ، یا وہ سنتان جس کو پیدا ہونا ہے، یا وہ موت جو آئے گی، یا وہ رزق، وہ آہار جو ملے گا، سب کے سب بھاگ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔
ایشور کی کرپا کے پرتی آشانوت رہنا وہ وشے ہے جسے روزہ رکھنے والا رمضان کے زمانے میں اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ ایشور نے پوتر قرآن میں وبھن جگہوں پر اپنی کرپا اور انوکمپاؤں کا الیکھ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو ایشور پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے اچھے پرینام بھی دیکھتا ہے۔ اسلامی شکشاؤں میں منشیہ کے آشاون رہنے کا آہوان کیا گیا ہے۔ قرآن کے انوسار جہاں آشا ایک سکاراتمک چیز ہے، وہیں پر نراشا بہت ہی نکاراتمک ہے۔ یہی کارن ہے کہ نراشا کو اسلام نے پاپ بتایا ہے۔ منشیہ کے بھیتر جب جیون کے پرتی آشا ہوتی ہے تو وہ اس کے مادھیم سے بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جو نراشا کی استھتی میں کر ہی نہیں سکتا۔ جیون میں کام آشا اور اتساہ سے پورے ہوتے ہیں، نراشا سے نہیں۔
دوستوں، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایشوریہ دوت حضرت ادریس کی قوم نے ان پر بہت ادھک اتیاچار کیے، یہاں تک کہ ایشور نے حضرت ادریس کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ میرے پیغمبر کے مہتو کو نہیں سمجھتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ان سے دور کر دوں۔ اور یہاں سے حضرت ادریس کے 40 سال آنکھوں سے اوجھل ہونے کا کرم شروع ہوا، اور ان کی جاتی کے لوگ بھیشن پرکوپ میں گرست ہو گئے۔ جب ان کو زیادہ بھوک لگتی تھی تو وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ 40 سال بعد ایک دھرم گرو ان کے پاس آیا اور لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ادریس تو ہمارے بیچ سے چلے گئے، لیکن ادریس کا خدا تو ہمارے بیچ ہے۔ ادریس ہم سے کیا چاہتے تھے؟ صرف ایک چیز چاہتے تھے کہ ہم ایشور کی اویلنا نہ کریں۔ लोगों ने उसकी बात मान ली और उसी समय तौबा कर लिया और अपने पापों को छोड़ दिया। इस फैसले के तुरंत बाद ही ईश्वर ने हजरत इदरीस से कहा कि जाओ कि मेरे बंदे योग हो गए हैं और अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फिर से अपनी जाति में प्रकट हुए क्योंकि उनकी जाति के लोग ईश्वरीय दूत को समझने योग हो गए थे और प्रकट होने की मुख्य वजह उस समाज के लोगों का सुधार था।
आज मानवता वैचारिक और आस्था संबंधी वंचितता का सामना कर रही है और ईश्वर से सबसे बेहतरीन दुआ यही है कि वो लोगों को गुनाह छोड़ने की कृपा प्रदान करे। हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक अलैहि सलाम कहते हैं कि इस रात रुको और सजदे करने वाले सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने अतीत की गलतियों पर नज़र रखी और आँखों से आंसू बहाए और इस प्रकार के लोग ईश्वर की कृपा से निराश नहीं हुए।
ये किसी को भी पता नहीं है कि शब-ए-क़द्र कौन सी रात है, लेकिन रवायतों में बयान किया गया है कि शब-ए-क़द्र रमज़ान की 19वीं, 21वीं और 23वीं रात में से कोई रात है और उस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि उस रात में कुरान नाजिल हुआ है। शब-ए-क़द्र में इंसान की अच्छाई, बुराई, जन्म, मृत्यु, गुनाह, जितने भी काम और घटनाएँ हैं साल भर के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए अपने अच्छे सौभाग्य के लिए दुआ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। कद्र की रात हर साल और हमेशा आती है और उस रात में इबादत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस रात को इबादत और तौबा में गुजारना चाहिए। कुछ रिवायतों में 23वीं रात को शब-ए-क़द्र करार दिया गया है। सुफियान बिन समत ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि पवित्र रमज़ान की कौन सी रात में शब-ए-क़द्र की ज़्यादा उम्मीद है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि 19वीं, 21वीं और 23वीं रात। उन्होंने फिर सवाल किया कि सबसे ज़्यादा रात किस पर बल दिया गया है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि 23वीं रात पर।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम शब-ए-क़द्र के विशेष कर्मों के बारे में कहते हैं कि 19वीं, 21वीं और 23वीं रात को नहाएं और रात जागकर गुजारने का प्रयास करें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि 23वीं रात वो रात है जिसमें हर काम ईश्वर की तत्वदर्शिता और हिकमत के अनुसार अलग होता है और इस रात में उन लोगों का भी निर्धारण होता है जिन्हें हज पर जाना होता है। बेहतर है कि इस रात 100 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में सूरह हम्द और तौहीद की तिलावत करे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो भी 23वीं रात को सूरह अनकबूत और रूम की तिलावत करता है, ईश्वर की सौगंध वो स्वर्ग में जाएगा।
वास्तव में शब-ए-क़द्र पवित्र कुरान पर अमल और उसकी आयतों पर चलने का फल हासिल करने का दिन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि कुरान मजीद हमेशा ताज़ा रहता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्योंकि महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने इस किताब को किसी एक ज़माने और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं उतारा, बल्कि कुरान हर काल और हर समय के लोगों के लिए नया और ताज़ा है। प्रलय के दिन कुरान अमर और पवित्र जीवन का नियम और घोषणा पत्र है। कुरान सारे दुखों और दर्दों का इलाज है। शब-ए-क़द्र में अल्लाह की ओर से उतारे गए कुरान में जो चीज़ भी चाहें तलाश करें मिल जाएगी। हर नियम और कानून इसमें मौजूद हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का जवाब इसमें मौजूद है, इसलिए कुरान को छोड़ना नहीं चाहिए।
ईश्वर की कृपा के प्रति आशान्वित रहना वो विषय है जिसे रोज़ा रखने वाला रमज़ान के ज़माने में अच्छी तरह से समझता है। ईश्वर ने पवित्र कुरान में विभिन्न जगहों पर अपनी कृपा और अनुकंपाओं का उल्लेख किया है। उसका कहना है कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो उसके अच्छे परिणाम भी देखता है। इस्लामी शिक्षाओं में मनुष्य के आशावान रहने का आह्वान किया गया है। कुरान के अनुसार जहां आशा एक सकारात्मक चीज़ है, वहीं पर निराशा बहुत ही नकारात्मक है। यही कारण है कि निराशा को इस्लाम ने पाप बताया है। मनुष्य के भीतर जब जीवन के प्रति आशा होती है तो इसके माध्यम से बहुत से ऐसे काम कर लेता है जो निराशा की स्थिति में कर ही नहीं सकता। जीवन में काम आशा और उत्साह से पूरे होते हैं, निराशा से नहीं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम लोकतंत्र की आड़ में इस्लामोफोबिया को बढ़ाने की साजिश के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
फ्रांस में इस्लामोफोबिया में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। वहां पर मस्जिदों को निरंतर बंद किया जा रहा है, साथ ही नए नए कानून पास करके मुसलमानों को अधिक से अधिक टारगेट किया जा रहा है। फ्रांस में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकतंत्र की दावेदार व्यवस्था का चेहरा पहले से अधिक स्पष्ट रूप में सामने आता जा रहा है। ये वो देश है जो विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के रहने वालों का स्थल है। फ्रांस में लगभग 60 लाख मुसलमान रहते हैं। यहाँ के रहने वालों को अपनी आस्थाओं और धार्मिक मूल्यों को अंजाम देने के लिए हर दिन अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
फ्रांस की सरकार ने कई तरह के कानून पास किए हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाकर और उनकी धार्मिक गतिविधियों को सीमित करके इस्लामोफोबिया को हवा दे रही है। ये परिषद लगातार मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। फ्रांस में इस्लामोफोबिया की नई लहर का उस समय उदय हुआ जब पश्चिमोत्तरी फ्रांस के रोन शहर में इस्लामी केंद्र की दीवार पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनादार में नारे लिखे गए।
पवित्र रमजान के शुरू होने से दो दिन पहले ही नमाजियों को मस्जिद की दीवार पर वॉल चौकिंग और पैगंबर इस्लाम तथा इस्लाम धर्म के अपमान पर आधारित आपत्तिजनक नारे देखने को मिले। रोन क्षेत्र की मुसलमानों की परिषद के प्रमुख मोहम्मद जीदूनी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति की मांग की।
उन्होंने फ्रांस प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम फ्रांस में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम इस देश में घृणा को तुरंत समाप्त किए जाने की मांग करते हैं। रोन शहर के मुसलमानों की परिषद के प्रमुख का कहना है कि मुसलमान इस प्रकार के बर्ताव से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। ये मुसलमानों के विरुद्ध एक सुनियोजित हिंसा का भाग है। उन्होंने फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों से सहृदयता व्यक्त करते हुए कहा कि वॉल चौकिंग का किसी भी प्रकार से औचित्य पेश नहीं किया जा सकता।
रोन के गवर्नर नैताली एप्रे ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, फ्रांस में इस प्रकार की कार्रवाई की अनदेखी नहीं की जा सकती। फ्रांस के गृह मंत्री ने भी इस्लामोफोबिया की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये हर धर्म पर आस्था रखने वालों की मूल स्वतंत्रता पर एक खतरनाक हमला है। दूसरे धर्मों के मानने वालों की भांति ही मुसलमानों की भी फ्रांस में रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि फ्रांस सरकार के इस्लाम विरोधी फैसलों और इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों की वजह से इस देश में इस्लामोफोबिया की लहर बढ़ती ही जा रही है।
वर्ष 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के निकट होते ही फ्रांस सरकार ने राष्ट्रीय परिषद में सत्ताधारी उदारवादियों ने दक्षिण पंथियों का समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामोफोबिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसी परिधि में फ्रांस की सरकार ने कुछ कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और उनमें से एक इस्लामिक केंद्रों और मस्जिदों की गतिविधियों को सीमित कर दिया गया। फ्रांस की सरकार ने इस कार्रवाई के लिए कट्टरपंथ से मुकाबले के बहाने के रूप में पेश किया।
फ्रांस की सरकार ने एक सुरक्षा कानून पास करके अब तक 17 मस्जिदों को बंद कर दिया है। फ्रांस में मुसलमानों की लगभग 10% आबादी है। इस देश में मुसलमानों की मस्जिदें और धार्मिक स्थल बहुत ही सीमित और गिने चुने हैं। फ्रांस के मुसलमानों ने एक साथ नमाज पढ़ने और धार्मिक कार्यों को अंजाम देने के लिए पार्किंग और अन्य स्थानों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। फ्रांसीसी सरकार मुसलमानों को नई मस्जिदों के निर्माण की इजाज़त नहीं दे रही है।
फ्रांस में मस्जिदों का निर्माण पहले भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अब मस्जिदों के निर्माण के लिए हालात और भी कठिन कर दिए गए हैं। फ्रांस का मुस्लिम समाज मस्जिदों के निर्माण का बजट पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है और उसे इस बारे में फ्रांस सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिलती है, इसलिए वो दूसरे मुस्लिम देशों से मदद मांगते हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार ने इस रास्ते को भी बंद करने के लिए कानून पास कर दिया है ताकि फ्रांस के मुसलमानों को विदेशों से कोई मदद न मिल सके।
फ्रांस में इस्लामोफोबिया का विषय कोई नया विषय नहीं है। वहाँ से आए दिन मुसलमानों और इस्लामी केंद्रों के विरुद्ध नए कानून पास होने और इस्लाम विरोधियों के हमलों तथा पवित्र धार्मिक स्थलों पर हमलों की खबरें मिलती रहती हैं। लेकिन अब फ्रांस में राजनीतिक समीकरण बदलने और दक्षिणपंथी धड़ों के एक शक्तिशाली राजनीतिक धड़े के रूप में सामने आने से हालात बहुत बदल गए हैं। दक्षिणपंथी धड़े इस दावे के साथ कि लोगों का अधिक से अधिक समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्रांस में मुसलमान सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास में हैं।
फ्रांस में सबसे अधिक कट्टरपंथी मार्टिन लोपेन हैं, जो मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी जीवन शैली व खान पान पर प्रतिबंध लगाने का बहुत बड़ा समर्थक है। इसी तरह एमैनुअल मैक्रों और मध्यमार्गी दक्षिणपंथी गुट भी मुसलमानों से बदला लेने और उन पर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। पिछले वर्ष पतझड़ के मौसम में एक प्रोफेसर की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने मुसलमानों पर हमले का क्रम शुरू किया और मुसलमानों के विरुद्ध कड़े कानून पास किए। फ्रांस की संसद ने भी इस्लाम विरोधी कार्रवाई करते हुए लड़कियों पर हिजाब की पाबंदी लगा दी। इन दोनों कानूनों में से एक के आधार पर फ्रांस में 18 साल तक की लड़कियों को हिजाब का कोई हक नहीं है। यह ऐसी हालत में है कि फ्रांस की संसद ने एक अजीबोगरीब कानून पास किया जिसके अंतर्गत अपनी मर्जी से संभोग करने की उम्र घटाकर 15 साल कर दी गई है, जबकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को हिजाब करने की अनुमति नहीं है।
फ्रांस में पास होने वाले एक अन्य कानून के अंतर्गत मुस्लिम माताओं को स्कूल की ओर से पिकनिक के लिए अपने बच्चों के साथ इस्लामी हिजाब में आने पर प्रतिबंध होगा। इसी तरह फ्रांस के विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों और मुसलमानों को नमाज अदा करने का कोई हक नहीं है। अगर इनमें से कोई एक कानून किसी भी दूसरे देश में लागू किया जाता तो इसको लेकर लोकतंत्र के दावेदार खूब हंगामा मचाते और इसे मूल अधिकारों का हनन करार दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र के दावेदारों के यहाँ मुसलमानों के विरुद्ध हर तरह के कानून को उचित करार दिया जा रहा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति भी मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाइयों को कट्टरपंथ से मुकाबले के परिप्रेक्ष्य में ही पेश करते हैं। ایمینول مکرون نے اکتوبر کے آرمبھ میں اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ ہم فرانس میں کٹرپنتھی اسلام کی اندیکھی نہیں کر سکتے۔ فرانس کے راشٹرپتی اس پرکریا میں سدھار کے لیے دھارمک کیندروں اور سکولوں کو بند کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں۔ فرانس کی مسجدوں کے اماموں کا پرشکشن کیا جا رہا ہے اور اسلامک کیندر اور مسجدوں کی وتیہ سہایتاؤں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
فرانس کے گرہ منتری نے میکرا کے اس بھاشن کے بعد ٹویٹ کر کے مسجدوں پر کڑی نظر رکھے جانے کی سوچنا دی۔ اسی پرکار راشٹرپتی میکرا کی اور سے پرتھکتاواد والا قانون سنسد میں اپنے انتم چرن میں ہے۔ اس دیش کی سنسد کبھی بھی اس قانون کو ہری جھنڈی دکھا سکتی ہے کیونکہ فرانس کی سنسد کے سارے دھڑے اس قانون کے سمرتھک ہیں۔ ایسے میں اس کو پاس ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔
فرانس کے مسلمانوں پر لگنے والے پرتیبندھوں کا فرانس اور پوری دنیا میں گھور ویرودھ ہو رہا ہے۔ یورپی کمیشن میں 25 غیر سرکاری سنگٹھنوں کو ملا کر بننے والے ایک انتراشٹری گٹھ بندھن نے مانگ کی ہے کہ فرانس سرکار دوارا اسلامو فوبیا کے سمرتھن کی جانچ کی جانی چاہیے۔ اس سرکاری سنگٹھن نے یورپی کمیشن کے پرمکھ اوورسولا وون ڈر لائن کو سمبودھت کرتے ہوئے دنیا کے 11 دیشوں سے مانگ کی ہے کہ بھید بھاؤ پورن برتاؤ کرنے کی وجہ سے یورپی کورٹ میں فرانس سرکار پر مقدمہ چلایا جائے۔
یورپی کمیشن میں 25 غیر سرکاری سنگٹھنوں کو ملا کر بننے والے انتراشٹری گٹھ بندھن کی یاچکا میں یہ آیا ہے کہ فرانس نے آستھاؤں کی سوتنترتا کو سیمت کرنے اور دھارمک پرتیبندھ لگانے کے لیے بہت سے قانون پاس کیے ہیں۔ اس یاچکا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قانون کے لاگو ہونے سے یورپ وشیش کر فرانس میں مانواधिकारों کا کھلا الگھن ہوگا اور یہ فرانس میں ابھیویکتی تتھا دھارمک سوتنترتا کے لیے بہت بڑا آگھات سمجھا جائے گا۔ تو دوستوں کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹا شخص جب سچ بولتا ہے تو کوئی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ انت میں مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر پیش ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے زور دے کر کہا کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ آئی آر جی سی نے دکشن پوروی پرانت سیستان و بلوچستان میں ایک سشستر گٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت میں COVID-19 مہاماری سے نپٹنے میں سرکار کی لاپرواہی پر ایک اچ عدالت نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور سیریائی وایو رکشا پرالی نے دیش کے پشچمی تٹی شہر لتاکیا کے پاس اسرائیل کے کئی میزائلوں کو ہوا میں ہی مار گرایا۔ آشا سبھا کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پروگرام کے بارے میں آپ اپنے وچار ہمارا اس ای میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اسی کے ساتھ محمد علی قمی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔Thank you.
Thank you.